الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہیں احکام تجارت حسب معمول اس پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق سوالات ہوں گے یعنی تجارت سے متعلق مالی لین دین سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ شریعت کی اتھینٹک مستند آپ کو معلومات اور اس کا جو حکم ہے وہ مل جائے الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم اسی لیے ہے درود شریف کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدظ اللہ علی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب ایک پہلا سوال میں آپ کے سوشل میڈیا پیجز پر آیا اس کو لینا چاہوں گا پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی وہ یہ کہ جی پی فنڈ یہ سوال آتا بھی رہتا ہے اور بہت عمومی سوال ہے بالخصوص گورنمنٹ امپلائیز کے لیے جی پی فنڈ لینا اور اس پہ ملنے والا اضافہ جو ہے اس کا حکم کیا ہے اس کو لینے کا کیا حکم
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پی فنڈ اصل میں سیلری سے ڈیٹیکٹ ہونے والا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ انویسٹ کے لیے الگ کیا جاتا ہے تو جیسے بندہ جاب چھوڑتا ہے تو وہ اس کی اصل رقم اور پھر جو اضافہ ہوتا ہے وہ اسے لوٹا دیا جاتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جو اصل رقم ہے وہ تو حلال ہے سرکاری اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو صرف ان کی سیلری سے پیسے کٹتے ہیں لیکن پرائیویٹ اداروں میں جو کام کرتے ہیں سیلری سے کٹتے ہیں کچھ کمپنی بھی اس میں شامل کرتی ہے تو کمپنی شامل کرے سیلری سے کٹے یہ اصل رقم ہے یہ جائز ہے لیکن اس کے بعد جو رقم پھر پیچھے انویسٹ ہوتی ہے تو وہ پھر سودی جو موڑ ہوتے ہیں ان میں انویسٹ ہوتی ہے تو وہ نفع حلال نہیں ہوتا تو اگر تو ٹک کی گنجائش ہے کہ آپ ٹک لگا دیں کہ ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے ہمیں اضافہ نہیں چاہیے تو بہت سارے ادارے یہ سہولت دیتے ہیں تو پھر اضافہ ملتا ہی نہیں ہے اور اگر ٹک نہیں لگایا تھا یا توجہ بعد میں گئی تو وہ اضافہ وصول کر کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ میں صدقہ کرنا ہے یاد رہے کہ اصل رقم حلال ہے جو اضافہ ہوا وہ حلال نہیں ہے
ٹھیک اب کال دیجیے
عرض ہے کہ کسی پراپرٹی کے کام میں ٹوکن کسی پارٹی کا لے کر پھر اس سے زیادہ آفر والی پارٹی کے ساتھ میٹنگ کروا دینا اونر کی اور ڈیل اس کو دے دینا اس کو چھوڑ دینا تو جس سے ٹوکن لیا کیا اس کا یہ عہد شکنی ہوئی یا یہ وعدہ تھا جو وعدہ ٹوٹ گیا تو یہ اس کو وعید اس کی ملے گی جو وعدہ خلافی کی ملتی ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں
دیکھیے بلا شبہ یہ عہد شکنی ہے اور وعدے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے عہد کاروباری جو معاہدے ہیں اس کی جو تاکید ہے وہ وعدے سے بھی کئی گنا آگے جا کر ہے کیونکہ وعدہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شرعی عذر آ گیا تو آپ نے پورا نہیں کیا تو اس میں حرج نہیں لیکن عہد کو بہرحال پورا کرنا ہی ہوتا ہے جو مالی عہد ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے تو یہ جو بد عہدی ہے یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ وعدہ کرے پورا نہ کرے منافقین کی جو علامات بتائی گئی ہیں یہ وہی بد عہدی ہے تو ایسا نہیں کر سکتے اگر اس طرح معاملہ شروع ہو جائے کاروبار اور تجارت میں تو دنیا کا نظام ابتر ہو جائے گا تو کاروبار دنیا میں زبان سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کا اعتماد آپ کی زبان اس پر آپ سودے کر رہے ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کے سودے زبان پر ہو رہے ہوتے ہیں اعتماد پر ہو رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں تیزی مندی رہتی ہے لیکن آپ ہوا کے دوش پر نہ چلیں اصولوں پر چلیں جب آپ نے ٹوکن دے دیا ہے آپ کا معاہدہ ہو گیا آپ کی بے ہو گئی ہے اب جو بھی سیٹلمنٹ ہے یعنی پیمنٹ لینی ہے پیمنٹ پوری کرنی ہے قبضہ لینا ہے اگلے جو مراحل ہیں اس کی طرف بڑھیں نہ یہ کہ جناب بدعہدی شروع کر دیں اور اپنے مفادات کو دیکھ کر فیصلے کریں یہ اصول پسندی نہیں ہے
جزاک اللہ کال دیجیے جناب
मुझे एक सवाल पूछना था। दुबई में मैं काम करता हूँ, वहां पे एक ये होता है कि आपको गोल्ड है ना लेना है आपको, तो आप जो करंट उस दिन की प्राइस है ना, वो प्राइस का 10% या 10% आप दे रहे हैं उनको, तो वो आपकी प्राइस उसी दिन के ऊपर लॉक हो जाती है। अगर तो बढ़ेगी तो भी आपको सेम प्राइस जो आपने एग्री किया वही मिलेगी, अगर कम होगी तो भी वो कम वाली प्राइस पे आपको गोल्ड सेल करेंगे। तो ऐसे परचेजिंग खरीदनी खरीदो फरोख्त जायज है?
ये सट्टाबाजी है। खरीदो फरोख्त तो ये होती है कि आपने कहा कि मुझे ये गोल्ड लेना है और आप ले आते, कैश आपके जेब में होता तो आप फौरी दे देते, दुकानदार आप पर एतमाद करता तो आपको कहता ठीक है बाकी पैसे बाद में ले लीजिएगा। ना आपने गोल्ड लिया ना आपको गोल्ड लेना था, आपने 10% दे के खेला है कि भाव ऊपर चला गया तो आपको नफ़ा मिलता रहेगा, नीचे चला गया तो दुकानदार को मिलता रहेगा। ये सट्टाबाजी है, ये हलाल नहीं है।
अगली कॉल दीजिए।
हजूर, अर्ज ये है कि मैंने ना किसी को काम के लिए पैसे दिए हैं, तो काम ये करते हैं कि उससे जानवर खरीदते हैं और उसको आगे सेल करते हैं, जो नफा होता है वो 50-50 करते हैं। तो अर्ज ये है कि जो जानवर मर जाए तो उसको भी 50-50 ही बांटेंगे, या जो असल रकम है दी हुई उसमें से उसकी रकम निकालेंगे? रहनुमाई फरमा दीजिए, जजाकल्लाहु खैरा।
पालने के लिए दिए इन्होंने,
इन्वेस्टमेंट की है, जानवर खरीदते हैं और फिर आगे बेच देते हैं, खरीद के बेच देते हैं, पालते नहीं,
यानी मुदारबत एक तरह से
जी।
पैसे इनके हैं, मेहनत किसी और की है,
ऐसा है।
तो देखें, इसमें नुकसान जो है ये मुदारबत है। मुदारबत में नुकसान अगर होता है तो वो फिर ये देखते हैं कि भाई आपने काम किया हुआ था साल से, तो आपने काफ़ी सारा पैसा भी कमाया उससे, तो पहला नुकसान का मरहला जो है वो नफ़े से पूरा करते हैं, अगरचे कि आप नफ़ा खा भी चुके हों, पहले नुकसान पूरा होगा नफ़े से, फिर कैपिटल की तरफ जाएंगे। इसमें जो वर्कर है उसकी सेफ साइड होती है, वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि भाई आपने भी तो नफ़ा लिया था, आप भी वापस करो,
ठीक है,
वो भी वापस करेगा नफ़ा।
सही,
इसलिए मुदारबत में ये होता है कि लिमिटेड रखनी चाहिए, 6 महीने बाद रिन्यू कर लें। जब आप रिन्यू करेंगे तो फिर आप दोबारा, आपको बेक नहीं होना पड़ेगा, ये उसके उसूलों कवायद हैं। तो कुछ 2-3 चीज़ें मैंने बयान की हैं, मुझे ये अंदाज़ा है कि आपकी तशफ़ी नहीं हुई होगी। उसकी वजह यह है कि मुदारबत पूरा एक चैप्टर है। फ़र्ज़ उलूम कोर्स में चले जाएं आप, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की एप्लीकेशन पर या फिर दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की वेबसाइट पर, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे और वहाँ आप पूरा सुन लें कि मुदारबत में नुकसान के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है।
मुस्लिम भी बाज़ों का जैसे सूरत आती है हमारे पास आकाम तिजारत में भी, और आपको इसका ज़्यादा तजर्बा है, लोग भी आते हैं, वो कारोबार की कंडीशन बयान कर रहे होते हैं, उनके जहन में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने शिरकत इख्तियार की है, शराकत की है या मुदारबत की है या कोई और सूरत है, बस वो एक कंडीशन बयान कर रहे होते हैं, फिर आप तय करते हैं कि जी ये मुदारबत है या शिरकत है। यहाँ पर नीयत का कोई अमल दखल नहीं होगा कि किस नीयत से इन्होंने की थी, किस नीयत से नहीं की थी?
हम जो कुछ बताते हैं
जी,
हम बताते हैं उनका बयान सुन के
जी,
उन्होंने क्या किया है। अगर ये कहते हैं कि भाई कुछ पैसे उसने मिलाए हैं, कुछ इसने मिलाए हैं, जैसे बाद लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमें ना सामने वाले को लॉस में शेयर करना है,
ठीक है,
तो हम कहते हैं कि भाई सारा पैसा आप ना लगाएं, कुछ पैसे उसके लगवा लें। अच्छा, लोग कहते हैं उसके पास तो पैसे नहीं है, हम कहते हैं उसको आप आधे पैसे कर्ज दे दें, वो अपने कर्ज की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट लगा ले,
ठीक,
अब वो लॉस में आधा शरीक हो गया है।
सही,
तो एक तो ये होता है कि उनके बयान की रोशनी में ही हम बताते हैं, दूसरी बात ये होती है, मैं समझा था आप दूसरा सवाल करेंगे, दूसरी बात ये होती है कि उसने तो बेचारे ने सिंपल सा सवाल किया
जी,
और हमने जनाब पूरी किताब खोल दी। ये इसी तरह है कि एक आदमी जाए इंजीनियर के पास
जी,
कहे मुझे घर बनाना है,
ठीक है, खोल देगा पूरा,
जिन कहेगा भाई वहाँ प्लानिंग क्या है, वहाँ उसके रूल्स क्या हैं, KDA के या जो भी शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके क्या रूल हैं, अगर वहाँ बेसमेंट बनाना है तो मिट्टी में कितनी जान है, पानी का क्या लेवल है, और फिर वो स्टील डिज़ाइन करेगा, फिर पता नहीं क्या कुछ करने के बाद फिर वो बताएगा अब आप शुरू करें बनाना,
ठीक,
तो क्या कोई ये कहेगा कि ये सारी इसने फजूल बातें की हैं?
काम की बातें सारी,
ये बुनियाद है
जी।
तो बुनियाद पर आगे जो है ना वो चीज़ें बनती हैं, इमारत बुनियाद पर बनती है, तो बुनियाद सही करना ज़रूरी होता है।
आपका आना भी एक बुनियादी तौर पे खटखटाना जो है ये खुश आइंद है कि चलें आए तो हैं, तो पहला स्टेप यही है ना कि आपके पास आए, हम किसी मुफ्ती साहब के पास आए, किसी आलिम दीन के पास आए और मुस्तनद ज़राए से मालूमात लेने की कोशिश करें, फिर आगे प्रोसीजर अभी मुफ्ती साहब ने बयान किया। मुफ्ती ये इरशाद फरमाए कि बाज़ औक़ात क्यों होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं मुख्तलिफ अफराद से लेने होते हैं या मुख्तलिफ इदारे भी इन्वॉल्व होते हैं। घर ही बनाने को आप ले लें तो ठेका दिया जाता है, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो काम कराना होता है तो उसमें मुख्तलिफ अफराद या इदारे इन्वॉल्व होते हैं, 4, 6, 8 जगह जाना होता है। तो बाज़ औक़ात यूँ होता है कि आम अफराद जो होते हैं, इसमें गरीब अमीर की भी तख़सीस नहीं है, वो यूँ कहते हैं कि यार हमें लाइन नहीं पता सारी, सारा प्रोसीजर नहीं पता, सारी चैन नहीं पता, फिर हमें बारगेनिंग का भी नहीं पता है। तो अगर एक शख्स खड़ा हो जाता है, कहते हैं जी सारे प्रोसीजर मैं करवा के दूंगा आपको, मैं इतने पैसे लूँगा, पैसे तो लगने ही हैं उसमें, मिसाल के तौर पर 80,000 रुपये में काम होना था तो कहता है जी मैं 90,000 रुपये लूँगा आपसे और मैं सारा प्रोसीजर करवा के दूंगा। अब ये जो सारे प्रोसीजर है इसमें कहीं ना कहीं रिश्वत का भी लेन देन है, तो आया इसका लेना और किसी का देना दुरुस्त हो गया नहीं?
देखिए पहली बात तो ये है कि मिसाल के तौर पर आपको गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट हैं
जी
वो रजिस्टर करवाने,
जी
प्रॉपर विंडो मौजूद है,
ठीक
बगैर रिश्वत के काम हो जाएगा,
सही।
सिर्फ क्या है कि आपको लाइन में लगना है आगे,
सही
ठीक है। एक आदमी नौकरी पेशा है वो नहीं लगना चाहता लाइन में, मसरूफियत उसकी इतनी है, छुट्टी नहीं मिल रही, मुतय्यन नहीं है कि जनाब ये काम रिश्वत पर ही होगा,
ठीक है
ऐसा नहीं है
जी, ऐसा तो नहीं।
अच्छा अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए कभी नहीं गया, जिस बंदे से गाड़ी जिसके ज़रिए ख़रीदी है उसी को कह दिया कि इसको आप रजिस्टर करवा दो,
ठीक
तो उनको पता भी है कि जनाब इसमें टैक्स वगैरह कितने ऐड होने हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको मालूम भी है, उसने कुछ पैसे लिए करा दिया, मुतय्यन नहीं है यहाँ पर। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ रिश्वत कोई मुतय्यन नहीं होती, आप किसी की सर्विस ले रहे होते हैं, विंडोज़ नहीं पता होती आपकी। अच्छा वीज़े के अंदर तो रिश्वत नहीं होती ना
जी,
तो गैर मुल्की वीज़ा होते हैं, बाज़ मुल्कों में रिश्वत तो है, ख़ासतौर पर हरमैन तैयबैन की जो वीज़े हैं इतनी भारी भारी रिश्वत चलती है इसमें, ठीक है। और बाज़ मुल्कों में रिश्वत का तसव्वुर नहीं है, आप चले जाएँ बहुत सारे मुल्कों के, सिर्फ वहाँ आपने एक एक्सपर्ट की खिदमात इसलिए लेनी होती हैं कि वो जो एक्सपर्ट है वो आपको डॉक्यूमेंट बताएगा,
ठीक
है आपके डॉक्यूमेंट लगने हैं या नहीं लगने हैं। जैसे हमने तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई किया, ठीक है, तो उसने ट्रेवल वाले ने कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमने भेज दिए, उसने कहा जी FRC भी लगेगा। मैं कहा हमको फैमिली के साथ थोड़े जा रहे हैं, FRC तो एक फैमिली हिस्ट्री डॉक्यूमेंट होता है। उसने कहा कि नहीं इसके रिक्वायरमेंट भी है। अब बिलफर हम डायरेक्ट जाते, वहाँ जाते लाइन में लगते, टोकन होता, सब कुछ होता,
नंबर आता,
फिर पता चलता है कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है
जी,
ठीक है इसमें ये कमी है। तो यूँ एक्सपर्ट्स की खिदमात बाज़ औक़ात इसलिए ली जाती है कि वो जो एक्सपर्ट है वो चीज़ों को सही करता है,
ठीक।
तो इस तरह की सर्विस लेने में कोई हर्ज नहीं है,
ठीक। कॉल दीजिए अगली।
काम तजारत में मेरा मुफ्ती साहब से यह सवाल है कि मैं ACCA का स्टूडेंट हूँ, तो हमारी जो बुक्स हैं ओरिजिनल जो हैं वो पहली बात तो मिलती नहीं है, मुश्किल से मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, 2-3 हज़ार की सुनी गई। तो उर्फ ये है कि उसकी फ़ोटो कॉपी मिलती है ना मार्केट में, वो मिलती है थोड़ी सस्ते दाम हो, 600-700। तो किसी ने बोला कि ये उसकी फ़ोटो स्टेट को ख़रीदना सही जो है ना नहीं है, तो क्या है? ऐसा है
देखें मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये ख़रीदना नाजायज़ है, नाजायज़ होने की कोई वजह होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई वजह होगी तो हम भी कहेंगे नाजायज़ है, बगैर वजह के तो नहीं कह सकते भाई
जी, तो जायज़ है उसे। अच्छा नाजायज़,
हाँ जायज़ है,
जायज़ ठीक। अगली कॉल थी,
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि अगर कोई हमसे दोस्त यार कारोबार के लिए कुछ पैसे उधार मांगे और कहे कि 1-1.5 साल बाद आपका कर्जा उतार दूंगा, जाहिर है कि पैसे की वैल्यू बाज़ औक़ात गिर भी जाती है, तो हम इस नुकसान से बचने के लिए उसे मार्केट से सोना खरीद कर दे दें, सोने का जेवर या बिस्किट वगैरह, और उससे कहें कि आप 1-1.5 साल बाद इतना ही सोना या इतने सोने की रकम वापस दे देना, तो हमारा इस तरह उसकी हेल्प करना कैसा?
देखें जो आप सोच रहे हैं ये तरीका बहुत अच्छा है, जेवर ना दें, जेवर के बजाय बिस्किट दें। अच्छा बिस्किट वैसे तो मशहूर है कि जी 10 तोले का आएगा, लेकिन 1 तोले के भी इस तरह के खाम माल की सूरत में मिल जाता है। जेवर में क्या होगा, काट होगी, नगीने होंगे, इस तरह के इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। तो खाम जो सोना है वो मेरे उसमें बताएं ग्राम भी मिल जाता है, जो भी मालियत आप देना चाहते हैं वो दे दें और सोने की सूरत में ही वापस लें। यह कर्ज है, कर्ज इस तरह दिया जा सकता है, जितना दिया उतना ही वापस लेना है। एक तो ये तरीका आपने बताया, कर्ज की बुनियाद होती है तबर्रो और एहसान पर, बगैर किसी गर्ज के कर्ज दिया जाता है, दुनियावी गर्ज के बगैर सामने वाले के साथ बेहतरी करते हुए आर्जी तौर पर उसको नफा पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं नफा भी लूं, तो यही तरीका इख्तियार करके नफा भी लिया जा सकता है कि भाई जो सोना आप खरीद रहे हैं उसको बेच दें। आपने मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना खरीदा, 1,20,000 का आया, वो 1,20,000 की चीज आपको 6 महीने पे देनी है, आपने वो 1,40,000 पे उसको बेच दी 6 महीने की बुनियाद पे, 6 महीने बाद उसने आपको कैश देने हैं, ठीक है। वो जाके सोना आप मार्केट में बेच देगा, थोड़ी सी कम मालियत में बिक जाएगा सोना। तो ये दूसरा जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार को भी इख्तियार किया जा सकता है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि पैसे रखे हैं जो कि मकान खरीदने की नीयत से, लेकिन उसमें ये नीयत है कि बच्चों को दे देंगे, बच्चे भी अब नाबालिग हैं अभी तक, तो क्या उन पैसों के ऊपर ज़कात बनेगी? जज़ाकअल्लाह खैरा।
देखिए, शराइत पाई जाती हो तो ज़कात बनेगी उन रकम पर।
अगली कॉल।
आज से सवाल ये है कि हम किसी को खुले पैसे देते हैं और वो खुले इतना होते हैं कि वो गिनता नहीं है और बगैर गिना रख लेता और कहता आप पे एतमाद है, क्या इस तरह कर सकते हैं? दूसरा ये, कोई हमसे 1,000 रुपए के खुले लेने आता है, हमारे पास 800 रुपए होते हैं, 200 नहीं होते, तो हम कहते हैं 200 बाद में ले लेना, वो कहता है ठीक है, तो ये जायज है?
देखिए, 200 बाद में ले लेना वाली जो बात है, तो थोड़ा सा मसला ये अब चेंज हो गया है। एक होता है ना कि मिसाल के तौर पर आप किसी से माल खरीदने गए हैं, आपने गंदम खरीदी है, फल खरीदे हैं, सब्जी खरीदी है, कपड़ा खरीदा है, आप 1,000 का बिल बना और 800 दे दिया आपने, 200 बाद में देंगे। तो यहाँ जो तबादला हुआ है वो तबादला करेंसी और गुड्स का तबादला है, यहाँ तो बहुत वसत है। लेकिन आपका पहला सवाल ये बता रहा है कि आप जो दूसरा सवाल कर रहे हैं ये करेंसी के पस मंजर में कर रहे हैं। तो करेंसी की बनेगी अब दो शक्लें। एक शक्ल ये बनेगी कि आपने किसी ने 1,000 रुपये दिए और आपने कागज़ के 800 रुपये दे दिए और 200 की उधार कर ली, ठीक है। ये जो तबादला है इसमें उधार नहीं हो सकती, ये जिंस से जिंस का तबादला है, हाथों हाथ कैश होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी मुराद है, वैसे तो आजकल सिक्के बिल्कुल ही बंद हो गए फिरोज भाई, 5 रुपए की कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है, लोगों ने
जी
रखना छोड़ दिए हैं।
जी सही।
अगर आपकी मुराद है ये पीतल तांबे के सिक्के, तो कागज़ की जिंस और उनकी जिंस अलग है, तो यहाँ सूत की रिबल फजल की दोनों इल्लतें नहीं पाई जा रही, इस वजह से यहाँ उधार हो सकता है। तो ये तीन मसले मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तीन मसलों में से जो सूरत पाई जाती हो, हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज, उसके मुताबिक देखा जाएगा।
अगली कॉल दीजिए।
अभी एक बात चल रही थी कि कोई सर्विसेज देता है और उस पे अपने एक्स्ट्रा पैसे ले लेता है, तो इसमें अर्ज ये करना चाह रहा था कि रिश्वत बेशक वो ना दे रहा हो, लेकिन लाइन क्रॉस करके अंदर जाके अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके अगर किसी का काम करवा देता है और थोड़ी सी अपने सर्विस चार्जेस लेता है, लेकिन बाहर की जो दिल शिकनी हुई अपने ताल्लुक को उसने इस्तेमाल किया, इसके बारे में शराई हुक्म क्या होगा? जो बाहर लाइन में थे उनका तो हक मारा गया ना।
देखिए, चूंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो ज़्यादा राइजुलअमल चीज़ें हैं पहले उसको बयान करें और स्टेप्स जितने जा सकते हैं उसमें जाएं, बाकी में ना जाएं। जो अब विंडो आपने खोली है तो थोड़ा सा मैं भी अब खुल के गुफ्तगू कर लेता हूँ। देखिए, एक होता है बिल वास्ता किसी चीज़ का इर्तिकाब और एक होता है बिला वास्ता। यहाँ जो कस्टमर है اس نے ایک سروس، جائز سروس ایک بندے کی لی ہے، ایک بندے کی جائز سروس لی ہے اور اس جائز سروس کے وہ پیسے دے رہا ہے. اب آگے جو بندہ ہے وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اگر رشوت بھی دیتا ہے، تو بھی اس بندے پر اس کا بوجھ نہیں آئے گا، اس بندے پر اس کا بوجھ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں طریقہ موجود تھا، ونڈو موجود تھی، اس ونڈو سے جو ہے جائز چیز ہو سکتی تھی. جیسے ایک بندہ ہے، اس کے پاس کوئی ٹی وی لے کر آتا ہے کہ بھائی میرا ٹی وی خراب ہو گیا، اس کو بنا دو. تو علماء نے لکھا کہ جناب جو مرمت کرنے والا ہے اس کا جو فعل ہے یہ جائز ہوگا، اس کے فعل کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا. اب اس کو جو یوز کرنے والا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، صحیح یوز کرے یا غلط یوز کرے. تو یہاں ایک سروس لی گئی ہے، اور جو سروس لی گئی ہے وہ متعین نہیں ہے کہ یہ گناہ ہی ہوگا وہاں پر. اب اس کے اوپر ہے، بروکر کے اوپر، کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. صحیح راستہ بھی موجود ہے اس کے سامنے، غلط بھی موجود ہے. وہ جو راستہ اختیار کرے گا، اگر غلط کرے گا تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. جو سروس لینے والا ہے اس کے اوپر وبال نہیں ہے، اس لیے کہ اس سروس میں یہ متعین نہیں ہے. اچھا، وبال کب آئے گا؟ مثال کے طور پر ایک تاجر ہے جو امپورٹ کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جو چیز میں نے امپورٹ کی ہے اس پہ ڈیوٹی زیادہ بنے گی. تو وہ تاجر اب ایجنٹ کو کہتا ہے ڈیوٹی کم کراؤ، اس پہ جھوٹ بولو، تم غلط ڈاکومنٹ بناؤ، غلط بیانی کرو. تو اب تو سروس ہی اس نے ناجائز کام پر لی ہے. اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سروس لینے والا ہے یہ جو ہے وہ بری ذمہ ہے؟ جہاں متعین ہو کسی نے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا اور وہ جعلی ڈاکومنٹ بنوا رہا ہے بروکر کے ذریعے، جو بروکر کو کام دے رہا ہے وہ ہے ہی ناجائز، متعینہ طور پر ناجائز ہے، اس کی صورت اور ہے. اور جہاں دونوں راستے ہوں اس کی صورت اور ہوگی.
ٹھیک ہے مصعب، ایک سوال آیا ہمارے پاس فیس بک پر، شہباز علی قائم خانی ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں اندرون سندھ میں چوپایا مال آدھے پر دینے کا رواج ہے، اس کا کیا حکم؟
آدھے کا مطلب یہ ہے کہ پالنے کے لیے دیتے ہیں، چرائی کے لیے جو ہاری وغیرہ ہوتے ہیں وہ گاؤں میں اس کو جانوروں کو گھاس وغیرہ چراتے ہیں، جس کو عام طور پر چرواہا بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ جب جانور بیچا جاتا ہے تو جو ڈفرنس آتا ہے اصل قیمت کے اوپر،
ٹھیک ہے،
وہ آدھا جو نفع ہوگا وہ اس کو دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، ہاری کو.
تو اس طریقہ کار میں شرعی اغلاط موجود ہیں.
صحیح.
اگر تو وہ ہاری غیر مسلم ہے
جی
تو آنکھ بند کر لیں یہ طریقہ کار،
ٹھیک ہے،
وہ قد فاستہ غیر مسلم سے کی جا سکتی ہیں،
ٹھیک ہے.
اگر مسلمان ہیں تو پھر وہ طریقہ فالو کریں جو ہم نے بارہا اپنے پروگرام میں بتایا ہے، کہ یا تو آپ یہ ہے کہ جتنے کے جانور خرید رہے ہیں آدھے پیسے اس کو قرض دے دیں، جانور تو ویسے بھی اس کے پاس ہونے ہیں، تو اب دونوں کے ہو جائیں گے، اور وہ قرض کی ایک مدت ہو اتنے دنوں کے بعد اس کو دینے ہیں، جانور بکیں گے، پتا ہوگا جانور کب بکنے ہیں،
صحیح.
تو وہ اپنے آدھے پیسے واپس دے دے گا.
ٹھیک، کال دیجیے.
ماشاء اللہ، پروگرام احکام تجارت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کو کوئی کپڑا بیچا جس کے اندر فالٹ ہے، ڈیفیکٹ ہے مال، اور اس خریدنے والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے یہ ڈیفیکٹ مال جو کپڑے کے اندر فالٹ ہے وہ مجھے منظور ہے خریدنا، لیکن اس پر جو ہے کہ 100 روپیہ کم لیا، پھر جو ہے کہ دوسرے دن آ کر وہ شخص واپس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کپڑا مجھے نہیں چاہیے، تو پھر جو بیچنے والا رہتا ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ اب میں آپ سے واپس نہیں لوں گا، میں نے آپ کو بتا کر ہی بیچا تھا. تو کیا اس طرح دونوں کا کرنا درست ہے، خریدنے والے کا جو ہے کہ واپس لا کر دینا اور بیچنے والے کا منع کر دینا لینے سے؟
اس طرح کی جو خریداری ہوئی کہ ٹھیک ہے مجھے اس کپڑے کا عیب اور خامی پتہ ہے، میں خرید رہا ہوں، اس طرح خریدنا جائز ہے. اور بعد میں دکاندار کا جو منع کرنا ہے وہ بھی جائز ہے، دکاندار منع کرنے کا حق رکھتا ہے.
اگلی کال دیجیے.
جی، بات یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ جی پی فنڈ کے اوپر جو اضافہ ہے نا وہ حلال نہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ منی کی ویلیویشن کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بندہ ملازمت میں، سرکاری ملازمت میں، جب وہ 30-35 سال بعد ریٹائر ہوتا ہے، تو جو اس کے پہلے سال میں اس کی کٹوتی کی گئی اگر فرض کریں 150 روپیہ، تو اس کو 35 سال بعد وہ 150 روپے ملے، تو یہ بھی کہاں کا انصاف ہے؟ तो ये तो सरकारी और दूसरा ये जबरी है, कोई अपनी मर्जी से नहीं होता, गवर्नमेंट लाजमी कटौती करती है। तो इस हवाले से मुझे बताइए कि ये तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस कटौती पर इजाफा ना लेता हो।
जी मुफ्ती, आप जरा देख लें कितने दाढ़ी वाले हैं, कितने बगैर दाढ़ी वाले हैं, ठीक है? तो क्या आप ये कहेंगे कि जो दाढ़ी रखते हैं वो गलत करते हैं? तो तरजीहात तो अपनी अपनी होती है ना। फिर मस्जिदों में कितने नमाजी हैं, कितनी मस्जिदें खाली हैं, कितने मस्जिदों से बाहर हैं, आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि जो मस्जिदों में वो गलत कर रहे हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ख़ास तौर पर जो लेन देन के मामलात हैं, पैसे के मामलात हैं, तो बहुत सारे हाजी साहिबान, बहुत सारे नमाजी साहिबान भी इसमें फिसल जाते हैं। पैसे के मामले में कुरान पाक ने बार बार तकवे का क्यों कहा है? फत्तकुल्ला इन कुंतुम तत्तकून, जगह जगह तकवे की ताकीद की है। तकवा नाम किस चीज़ का है? हराम से बचने का नाम तकवा है। तो हराम से जहाँ बंदा ज़ाती एक्टिविटी के तौर पर बचेगा, किसी एक्टिविटी में शामिल ना हो, वहीं पर हराम आमदनी से भी बचना उसकी ज़रूरत है। तो ठीक है, बहुत सारे लोग बचते हैं, बहुत सारे नहीं बचते, हर एक अपने अमल का जवाबदेह है। लेकिन इस बात को मियार नहीं बनाया जा सकता कि चूंकि ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं लिहाजा ये काम सही हो गया, ऐसा नहीं है। इस मामले में जो जमहूरियत का तस्वूर है वो बातिल है। हर आदमी अपने अमल पर जवाबदेह है अल्लाह की बारगाह में, और कुरान पाक ने इस नज़रिए की शदीद मजम्मत बयान की है कि जो कसरत खबीस है, यानी ये लफ्ज़ ही खबीस के वहाँ पर, कि तुम्हें बुराई की कसरत ताज्जुब में न डाले। कुरान पाक ने वाज़ह तौर पर कहा है। तो बात यह है कि अगर सारी कहानी घूम रही 135 रुपए पे, तनख्वाह अपने लिए 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, ठीक है, एक प्राइमरी स्कूल टीचर भी जो है वो 30-40,000 रुपए ले रहा है, तो वो इस बात का तो रोना रो रहा है कि मेरे जो 200 रुपए कटे उसकी जनाब वैल्यू कम हो गई, वो जो 40,000 रुपए लिए उसने उससे कोई काम करे ना, वैल्यू बढ़ाए, 40,000 रुपए से सेविंग करे आधी।
यानी मुझसे जब कटे थे जब तो उसकी वैल्यू कमी थी।
ना ना, जो कटे हैं वो तो आटे में बाल के बराबर हैं
जी,
वो तो इतने से हैं
जी,
लेकिन जो मिले हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जब पैसे की वैल्यू के कम होने का मामला दरपेश है तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? सेविंग से करेंगे। जो आपके हाथ में सैलरी आ रही है उसमें आप बचत करें, बचत करके कोई काम काज में लगाएं, कोई बकरियां पालने, अगर गांव देहात में रहते हैं तो गायें पालने, या पता है आपको भैंस कितने की आजकल? 3 लाख से कम तो भैंस नहीं है। अच्छा, यही आप अगर पाड़ी खरीदते हैं तो 50,000 रुपये की आती है, 2 साल के बाद वो 3-2.5 लाख रुपए की हो गई, ठीक है। तो जिसके पास गांव देहात का माहौल है, बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका उसके पास, अच्छा ये नहीं कर सकता, फसलें हैं, अभी सरसों आई है, ठीक है, सरसों जो थी पिछले साल 3,000 रुपये से शुरू हुई थी और 5,000 से ऊपर गई थी, तो कितने ऐसे ज़राए आमदनी हैं, छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों में तो फिर तिजारत में 101 आइटम है। तो आप सेविंग करके अपने उस पैसे को तिजारत के ज़रिए बढ़ाएं। आप क्यों इस बात पर कमर बस्ता हो गए हैं मेरे वो जो पैसे कट रहे थे, बस वही एक तरीका रह गया है सूदी तरीका पैसे के बढ़ने का, वरना तो डीवैल्यू हो रही है मनी जनाब। और भाई आप वो तो छोटे से पैसे हैं, वो तो आपका 1% भी नहीं है तनख्वाह का, जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो जो रिकवरी करनी है वो यहाँ से करें आप, हलाल और जायज़ तरीके से। और ऐसी बात नहीं है एक से बढ़कर एक लोग हैं जो टिक लगवा देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हज़ारा हज़ार लाखों रुपए लोग छोड़ देते हैं सूद की वजह से, सूद इस्तेमाल नहीं करते, सूद तो फिर सूद है ना।
कॉल दीजिए।
अभी सवाल आया था कि जो कटौती होती है GPF फंड और मुख्तलिफ नेम्स दिए जाते हैं इसको, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिकर दावत इस्लामी की वजह से सोच बनी तो वहाँ ऑप्शन थी, मैं भी एक सरकारी मुलाजम हूँ तो GPF इंटरेस्ट फ्री करवाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून भी है और बरकतें भी आ रही हैं। ये नो डाउट के ऑप्शन होती है और बंदा अवेल कर ले तो कोई मसला नहीं। फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट बहुत सारी जगहों पर अप्लाई नहीं होता, जो साहिल ने सवाल किया है कि वहाँ पे मतलब डी वैल्यू हो जाएगा, 20 साल बाद कोई और कीमत होगी, तो करना चाहे बंदा तो बहुत कुछ नेकी के रास्ते निकल आते।
माशाल्लाह, हमें खुशी हासिल हुई, बर वक्त आपने रिप्लाई दिया। अच्छा, مسائل سے معذرت کے ساتھ میں ان پر ان کو سامنے رکھ کے گفتگو نہیں کر رہا، ایک جنرل تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے میروز بھائی
جی
کہ جی چونکہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے
جی.
آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی الخبیث والطیب، غلط کام اور صحیح کام برابر نہیں ہو سکتے
جی.
خبیث اور طیب کے لفظ آئے ہیں وہاں پر
جی.
ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر غلط کام زیادہ ہو رہے ہیں، غلط چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں
جی.
تو یہ نہ ہو کہ تمہیں وہ تعجب میں ڈال دے، متاثر ہو جاؤ تم اس سے جی. فرمایا گیا فتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا جو ڈر ہے اس کو معیار بنا کر فیصلے کرنے ہیں، حرام سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام حلال و حرام کی وجہ سے. چلیں جی،
چلیں جی، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.